अम्मी जान, खुदा के लिए मत रोइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि बेटा मेहरान जैसा और बेटी इस जैसी मिली।
ओहो, जो भी बात होती है आखिर में मुझ तक पहुंच ही जाती है।
तुम तक भी पहुंच ही जाएगी। इन हसास हालात में मैं तुम्हारे अब्बू को परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी तरफ ध्यान है मेरा।
जानती हूँ अम्मी जान, जानती हूँ आप हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं।
क्या मुसीबत खड़ी की है लोगों ने हमारे लिए।
अम्मी जान, खुदा के लिए खुद को इतना मत अजियत दें। उठिए उठिए, बाहर चलिए, जाइए अब्बू के पास बैठ जाइए, यहां मत बैठिए, उठिए।
अब क्या होगा मेहदी, उसके साथ क्या करेंगे?
मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए उसे जेल जाना होगा।
मैं मर जाऊं क्या करूं, कितने दिन तक ये सब कितने दिन
नहीं मालूम अम्मी जान, लेकिन चूंकि उसका जुर्म संगीन नहीं है, इंशाल्लाह सजा भी कम होगी।
आखिरकार उसने अपना काम कर दिया, जितनी भी नसीहत करते थे एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता।
मैंने बैंक के मैनेजमेंट से बात की है, अगर उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली तो मसला काफी हद तक हल हो जाएगा।
ये क्या कह रहे हो मेरे बेटे, बैंक बैंक है, अपने मुनाफे की सोचता है, किस लिए शिकायत वापस लेगा?
बैंक के कानूनी हुकाम कह रहे थे कि अगर मेहबारियान को ढूंढ के उससे बैंक की रकम ले सकें तो मेहरान के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले सकते हैं वो।
मोहसिन साहब उठिए, एक फोन करके देखिए कहाँ गया है। वो तो खुद ही इतना चढ़ जाता है कि कोई उसे कुछ कह ना सके, अपनी गलती माने बगैर उल्ट मुंह भी बनाता है।
अम्मी जान, खुदा के लिए कुछ अरसे तक मेहरान का ख्याल रखें, उसके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। चंद दिन तक उसे कुछ मत कहिए, इस अरसे मैं कुछ करता हूँ।
हजार दफा उसे समझाया कि मेरे बेटे दौलत खुशहाली का सबब नहीं बनती, लेकिन ये खुद को मार रहा था मालदार बनने के लिए।
अम्मी जान माफ कीजिएगा, मैं नहीं कहता कि मेहरान कसूरवार नहीं है, लेकिन हमारा भी कसूर है। खुद आप ही उसे कहती थी कि क्या तुम्हारे पास ढंग का घर है, अच्छी गाड़ी है, दौलत है तुम्हारे पास जो रिश्ते के लिए चलें।
हाँ अब भी मैं यही कहती हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था कि जाके जाली दस्तखत फ्रॉड और रिश्वत के जरिए खुद को मालदार बनाए। ऐसा पैसा बनाना कौन सा कमाल है?
अगर हम या नाजनीन के वालिद असली साहब इब्तदा ही से अपने बच्चों की शादी के लिए घर और नए कारों की शर्तें नहीं रखेंगे तो मेहरान जैसे नौजवान दौलत कमाने के लिए ऐसे रास्तों पर नहीं जाएंगे।
मेहदी, उस रात जब हम असली साहब के घर गए थे तो तुम्हारे ख्याल में उनको इस बात का इल्म था?
नहीं, लेकिन उनकी बेटी जानती थी
तो इसीलिए कमरे से बाहर नहीं निकले हैं?
हाँ।
अच्छा, अगर जानते थे वो लोग तो हमें किस लिए रिश्ता मांगने के लिए बुलाया और जलील खार किया?
अम्मी जान मुझे नहीं मालूम, शायद बाद में पशिमान हो गए।
अम्मी जान अब ऐसी बातों का क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका है।
पता नहीं मैंने कहां पर गलती की है, कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने तो पूरी जिंदगी कोशिश की है कि हत्ता अपने बच्चों को एक लोकमा भी हराम का ना खिलाऊं और किसी का हक ना खाऊं, तो फिर क्यों ये बच्चे इस तरह से हो गए?
अब्बू जान आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?
देखिए मेहरान ने बचपना किया, लेकिन उसने उसी पाक और हलाल जिंदगी की वजह से ही खुदा ने फौरन उसका रास्ता रोक लिया।
हर कोई अपने कामों का जिम्मेदार है, आप खुद को हमारे कामों की वजह से गुनहगार मत ठहराएं। अबू जान मुझे और मेहरान दोनों को ऐसे झटके की जरूरत थी ताकि जाग सकें।
उस फानी का एड्रेस मुझे दे दो।
किस लिए?
जाके उससे बात करना चाहता हूँ, शायद उसे राजी कर सकूं कि हमारे खिलाफ मुकदमा वापस ले ले।
अबू जान उस आदमी से बात करने कोई फायदा नहीं है, उसने मुझे ब्लैकमेल करने का मंसूबा बनाया है, जब तक रकम नहीं उसको मिल जाएगी पीछे नहीं हटे।
मुझे बात करने दो बेटा, बात करने में क्या नुकसान है, कोई नुकसान तो नहीं है?
क्यों नहीं नुकसान है, मैं नहीं चाहता कि आप उस आदमी से कोई बात करें। अबू, मुझे अपनी गलतियों की वजह से काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। खुदा के लिए मुझे इससे ज़्यादा शर्मिंदा ना कीजिए।
यानी हाथ पर हाथ धरे तुम दोनों को जेल जाते हुए देखता रहूं?
अबू जान, अगर हमारी किस्मत में जेल लिखी है तो जाना पड़ेगा। आप इस तरह से खुद को परेशान करेंगे और हमें शर्मिंदा करेंगे।
जी, एक आदमी है, मेहरान से काम है, सियावश नाम है।
उसकी ऐसी की तैसी, जो करना था कर चुका, मजीद मेहरान से क्या चाहता है?
इस वक्त उसकी माँ भी मेहरान के बारे में यही कह रही होगी।
उसे क्या हक पहुँचता है? सारा कसूर उसी लड़के का है। उसने मेहरान को मजबूर किया कि कागजात ले जाके मेहदी की जगह दस्तखत करे। मैं अभी उसे बताती हूँ।
अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इस वक्त इसके साथ बात करने का फायदा नहीं। मैं जाके देखता हूँ कि ये किस लिए आया है यहाँ।
अभी मेहदी साहब आते हैं बाहर। पुरसुकून रहिए अम्मी।
सलाम अलैकुम मेहदी साहब।
अलैकुम सलाम।
मेहदी साहब, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। उस बेगैरत ने हमें इतना इत्मीनान दिलाया था कि मैं एक फीसद भी एतमाद नहीं दे रहा था कि ऐसा होगा।
मेहरान की क्या खबर है?
नहीं, क्यों?
अम्मी को बात का पता चल गया है। मेहरान भी परेशानी में घर से निकल गया। जितना भी मिला रहे हैं फ़ोन उठा नहीं रहा है। तुम एक फ़ोन करके देखो क्या कहता है।
मैं भी जितना फ़ोन मिला रहा हूँ मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। इत्तेफाक से उसके लिए बहुत अहम खबर लाया हूँ। बताना चाहता था कि मैं मारियान को पकड़ लिया गया है।
कहाँ से, कैसे?
डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन थाने से फ़ोन आया था। कह रहे थे कि एक और मुद्दई ने जिसने कागजात दिए थे उसको धर लिया है।
अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र।
मेहदी साहब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने मेहरान पर जोर दिया था कि आपसे कागजात लें।
चलो जाने दो, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। मेहरान को देखो तो उसे कहना पागल बनना छोड़ दे, वापस घर आ जाए, यही बेहतर है।
जी ज़रूर, आप परेशान ना हो।
बहुत शुक्रिया।
मिला तो खुद ही फ़ोन कर लूँगा आपको।
ठीक है,
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
कौन था?
कोई नहीं।
फरहमन था ना?
अरे छोड़ो यार,
सच में बहुत गुस्साख है। किस लिए फोन कर रहा है? क्यों तुम्हारी जान नहीं छोड़ रही है?
आखिर कुछ अरसे बाद छोड़ ही देगा, यानी मजबूर हो जाएगा छोड़ने पर। उफ़ो,
देख रही हूँ। दो मैं जवाब देती हूँ।
नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
उस पर रहम ना खाओ। दो मैं तीन चार सुनाती हूँ ताकि तुम्हारे पीछा छोड़ दे।
बेहतरीन तरीका यही है कि कोई जवाब ना दे। ये लो। चलो चलते हैं। चलो ना, देर हो गई।
ठीक है, खुद जानो।
हेलो।
सलामकुम, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे?
उसे अवश्य मूड नहीं है, कोई काम हो तो बताओ।
इत्तेफाक से तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाना चाहता हूँ जो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक कर देगा। मैं मारियान को पकड़ लिया गया है।
सच कह रहे हो?
हाँ, पकड़ा गया, इस वक्त थाने में। चलो दोनों देखने चलते हैं।
खुदा का शुक्र है।
खुदा का लाख लाख शुक्र है, वाकई
खुदा का शुक्र है।
पकड़ा गया बिलाखिर। उसके बुरे दिन आ गए, अब इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे उसे। मेरे और तुम्हारे अलावा 10 और लोगों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट की है, उसका फातिहा पढ़ लिया गया है। ये मेरा मोबाइल आपके पास है। किसे फोन कर रहे हो? असली साहबा को फोन कर रहे हो ना?
फोन तो उठा नहीं रही है।
कोई बात नहीं, इतना जिद नहीं करो, आखिर कब फोन उठा ही लेगी, गुस्से में तो है ही है बिलाखिर।
जानता हूँ सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। जिस काम में भी हाथ लगाता हूँ मुझसे उसकी दूरी का बायस बनता है। कल यूनिवर्सिटी में साफ लग रहा था कि माफ करने वाली नहीं है।
अब कहाँ जा रहे हो?
तो मैं घर पहुंचाने जा रहा हूँ ना।
मुझे पहुंचा कर अपने घर चले जाओगे ना?
नहीं पता से आवश, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं।
अरे मेरे भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, असली मसला मेमारियान था वो भी पकड़ा गया।
अगर मेरी किस्मत में नाजनीन नहीं तो कुछ भी मेरे लिए अहम नहीं।
मैं तुमसे बताना नहीं चाहता था, सोचा बताऊंगा तो। चलो छोड़ो छोड़ो।
रोज भी रिश्ता मांगने गया है?
ये कैसी बात कर रहे हो मेहरान? फिर कहते हो मैं उसे जानता हूँ, वो इंतजार में थी कि तुम ना कहो और उसे रिश्ता मांगने के लिए बुला लें।
ठीक से बताओ क्या कहना चाहते हो।
मुझसे नाराज मत होना मेहरान, लेकिन मैंने उसे फोन करके कहा था कि मोहम्मद रजा के साथ कुछ कर सकता है वो, और उसके लिए भी मुसीबत खड़ी कर देगा। मैंने उससे कहा था कि तुमसे बात करके तुम्हें इस हमाकत से मना कर दें। उसने कहा कि मुझे नहीं मतलब और मेरे लिए मेहरान अहम नहीं है, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी आ गई, इसका मतलब यह कि तुम उसके लिए अहम हो।
तुमने उसे क्यों बताया?
तो क्या करता, तुम्हारे लिए परेशान था।
मैं भी हैरान था कि उस दिन तो क्लास नहीं है तो किस लिए उठ के यूनिवर्सिटी आई है।
तुम फिलहाल उसे फोन मत करो, कुछ दिन गुजर जाने तो गुस्सा उतर जाएगा, बाद में फोन कर लेना।
डॉक्टर साहिबा, नाक का जख्म तो जल्दी ठीक हो गया था, लेकिन ये क्यों इतना टाइम ले रहा है?
बात ना करें
जी। अच्छा,
धुंधला तो दिखाई नहीं देता?
नहीं।
आंखों से पानी तो नहीं निकलता?
पहले की तरह तो नहीं।
जिसने तुम्हारी आंखों में इंजेक्शन लगाया था वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था?
जी।
तो जब मैंने पूछा तो तुमने ये क्यों कहा, नहीं पता?
या मेरे सब दोस्त उसकी तारीफ कर रहे थे, तो स्पेशलिस्ट ही होगा ना।
अपना सर मशीन के साथ चिपकाइए।
डॉक्टर साहिबा, मुझे लगता है मुझे जुकाम हुआ है। पहले जब भी मुझे नज़ला होता था तो ऐसे ही मेरे पपोटों के पीछे दर्द होता था।
दोनों पपोटों के पीछे दर्द होता है या जिसकी सर्जरी हुई है?
नहीं, दोनों के पीछे।
अच्छा, तशरीफ लाइए।
ख़त्म हो गया?
जी हाँ। एक टोपोग्राफी लिखी है, बनवा कर मेरे पास ले आओ ताकि मैं चेक कर लूं।
टोपोग्राफी किस लिए?
इसलिए कि मुझे इत्मीनान हो जाए कि तुम्हारी आंख को नुकसान नहीं पहुंचा।
तो क्या आंख को भी कुछ हुआ है?
अर्ज किया ना, सिर्फ इत्मीनान के लिए। ये टेस्ट सर्जरी से पहले होने चाहिए थे ताकि इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर को आंख और उसके अतराफ की साख के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल हो जाती।
लेकिन डॉक्टर ने तो मुझसे ये चीज़ नहीं मांगी थी।
इसीलिए तो मैंने पूछा कि वो स्पेशलिस्ट था कि नहीं। स्पेशलिस्ट अपना काम जानते हैं।
काश कि इस तरह की स्पेशलाइजेशन होती नहीं।
ये बात बिल्कुल गलत है। चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी उन अफराद के लिए जिनको जलने के वाकयात में हादसात पेश आते हैं नहायत मुफीद है। ये भी तिब के दूसरी स्पेशलाइजेशंस की तरह से है और अगर इसका सही इस्तेफादा किया जाए तो बहुत मुफीद होता है। मसाल उस वक्त खड़े होते हैं जब बाज़ नौजवान बिला वजह और बग़ैर इसके कि चेहरे में कोई नुक्स हो, कोई बुराई हो, चेहरे की खूबसूरती के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्जरी करवाते हैं।
हर इंसान दूसरों से बेहतर जानता है कि उसके चेहरे में नुक्स है या नहीं, ورنہ اگر کسی کے چہرے میں مسئلہ نہ ہو تو وہ پاگل تو نہیں ہے کہ جا کے سرجری کروائے۔
لیکن اس وقت کم از کم ہمارے ملک میں چہرے کی سرجری ضرورت کی بجائے فیشن کے طور پر کروائی جاتی ہے۔ البتہ میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہمارے بعض نوجوانوں کو آنکھیں بند کر کے فیشن کے پیچھے بھاگنے کی بیماری لگی ہوئی ہے کہ بس تقلید کیے جاتے ہیں بغیر جانے بوجھے۔
لیکن میرے خیال میں جب تک کوئی چیز اچھی نہ ہو تو فیشن میں تبدیل نہیں ہوتی، یعنی بلا وجہ کوئی چیز تو فیشن نہیں بنتی۔
دیکھیں، میں آپ سے متفق ہوں، دنیا میں کوئی بھی چیز فیشن اور موڈ بلا وجہ نہیں ہے۔ مثلا میرے بعض کاسمیٹیشن کولیگ بعض اوقات اپنے پیشوں کو بہت زیادہ تجارتی اور منافع بخش پیشے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہی بات ایران میں کاسمیٹک سرجری کے موڈ ہونے کا سبب بنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نوجوان دیکھے بغیر یہ کام کرتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحبہ پلیز، اگر میری بہن کی آنکھوں میں کچھ ہوا ہے تو بتا دیں۔
انشاءاللہ کچھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن میں نے جو ٹوپوگرافی لکھی ضرور کروا کر میرے پاس لے کر آئیں۔
جی ابو کو کچھ نہیں بتانا کہ بار بار فون کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پہ کہ تم بھی نہ بتاؤ کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔
میں آپ کے مسئلے کے لیے ایک آئی ڈراپ لکھ دیتی ہوں، ہر 6 گھنٹے بعد 2 ڈراپ اس آنکھ میں جو زخم کے نزدیک ہے ڈالنا ہے آپ کو۔
فرمائیے۔
فرحمان صاحب۔
جی فرمائیے۔
حاجی محسن آپ ہیں؟
جناب علی
فانی ہوں حاجی صاحب۔ ہیلو،
کہیے۔
حاجی محسن، میں نے بڑی مشکل سے بازار میں کسی سے آپ کا نمبر لیا ہے، مجھے آپ سے 2 کھڑی باتیں کرنی ہیں۔
آپ نے جو کام کیا ہے اس کے بعد بات کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟
بچتی ہے حاجی صاحب، بہت ساری باتیں بچتی ہیں، بشرطے کہ آپ میری باتیں غور سے سنیں۔
میں سن رہا ہوں، لیکن حق اور حقیقت کی باتیں، جھوٹ اور الزامات نہیں سننا چاہتا ہوں۔
حاجی صاحب، ایک طرفہ فیصلہ نہ سنائیں، میرے پاس بھی کہنے کو آپ کے بیٹے جتنی باتیں ہیں۔ آپ ذرا مہربانی کر کے 1 منٹ کے لیے میرے آفس تشریف لے آئیں، میں بتاتا ہوں۔ ہیلو،
اپنا ایڈریس SMS کر دیں۔
ٹھیک ہے، ضرور۔ ابھی آ رہے ہیں نا؟
ہاں۔
ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔
خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
میں سمجھا آپ نے یہاں بلایا ہے منطقی اور کھری بات کرنے کے لیے۔
کہہ تو رہا ہوں حاجی صاحب، آپ میرا توان بھر دیجئے، میں اپنا مقدمہ واپس لے لوں گا، اس سے زیادہ کھری بات ہو سکتی ہے کیا؟
مجھے پورے قصے کا علم ہے فانی صاحب، جانتا ہوں کہ آپ چیکس کی رقم نہیں بھر سکے، اور آپ نے خود مہدی سے کہا کہ ورکشاپ کو بھیج دو، تو یہ جو رقم مانگ رہے ہیں آپ، یہ بھتہ ہے، تاوان نہیں۔
آپ کے بیٹے نے میری رقم سے اپنے قرضے ورضے ادا کیے، اور پھر جب میں نے اس سے کہا کہ اب تم مجھے تھوڑی رقم قرض دو تاکہ میں قرضے ادا کر دوں، تو کہنے لگا کہ مجھے کیا ہے، مجھ سے کیا مطلب۔ حاجی محسن، اگر بات زبردستی کی ہو تو پہلے آپ کے مہدی نے زبردستی کی ہے، میں نے نہیں، میں تو صرف جواب دے رہا ہوں۔ اس سے کہیں مجھے 200 ملین دے دیں اور قصہ ختم کر دیں گے۔
میں نے ساری عمر اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کا کہا ہے، کہ نہ کسی پر ظلم کرے اور نہ ظلم سہے۔ اب اگر مہدی سے کہوں گا کہ آپ کو بھتہ دے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں خود اپنی ہی بات کی نفی کر رہا ہوں۔
تو کیا آپ اپنے بچے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں؟
نہیں، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، اس کے لیے جو ہو سکے گا وہ کروں گا تاکہ آپ کو رسوا کر سکوں۔ انشاءاللہ میں کر سکوں گا، اگر نہیں کر سکا اور آپ جیت گئے تو آپ کا معاملہ خدا کے سپرد کر دوں گا۔
حاجی محسن، آپ بازار کے عزت دار افراد میں سے ہیں، خدا کا دامن پکڑنے کے بجائے اپنے لڑکے سے کہیے کہ میرا پیسہ دے دے، تاکہ آپ کی مزید بے عزتی اور رسوائی نہ ہو۔
جس خدا کا دامن میں نے پکڑا ہے، اہم یہ ہے کہ اس کے سامنے انسان بے عزت نہ ہو۔
حاجی صاحب، اگر آپ یہاں سے باہر نکل گئے تو پھر میں اس رقم پر راضی نہیں ہوں گا،
आखिर तक जाऊंगा और आपके बेटे को जेल भिजवा के रहूंगा।
फानी साहब खुदा ही जानता है कि किस्से का एंड क्या निकलता है। जनाब फानी साहब,
अरे खाते क्यों नहीं हो तुम?
बताए ना कि दिल नहीं कर रहा, खामखा ऑर्डर दे दिया। सलामुअलैकुम अबू जान।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम कहाँ हो?
मैं सियावश के घर पर हूँ।
फौरन घर आ जाओ।
अभी नहीं, चंद दिन के बाद आऊंगा मैं।
क्यों?
अम्मी को जरा पुरसकून होने दें, फिर आऊंगा मैं।
तुम्हारी माँ पुरसकून है, अब घर आ जाओ तुम।
अबू जान कसम से मैं नहीं चाहता था कि इस तरह हूं। सोच भी नहीं सकता।
छोड़ो इन बातों को, हमें भूख लगी है बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जी
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज अबू जान।
आ रहे हैं?
हाँ। शुक्रिया। देखो मेहरान घर आए तो उसे कुछ ना कहना।
ये कैसे मुमकिन है कि कुछ कहा ना जाए उसको? आखिरकार इन बच्चों को नसीहत तो करनी चाहिए ना।
हाँ नसीहत अच्छी है, लेकिन मीठी जबान से। तुम्हारा मसला यह है कि नसीहत नहीं करती हो बल्कि डांटती हो, वो भी बहुत तुंद और तेज लहजे में।
जब तुंद और तेज जबान जब कारगर नहीं हुई तो फिर मीठी जबान से क्या होगा?
अकरम बेगम, मेहरान बेअक्ल लड़का नहीं है, खुद समझ चुका है कि गलती कर बैठा है, अब नसीहत की कोई जरूरत नहीं है।
अगर उसमें अक्ल होती तो खुद को इस दलदल में न फंसाता।
बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आया तो उसे कुछ ना कहना, जरूरत हुई तो मैं खुद उससे बात कर लूंगा।
खाना तैयार है, उसके आने का इंतजार करेंगे।
हाँ आने दो, साथ खाएंगे। महनूष कहाँ है?
अपने कमरे में।
तो बाहर क्यों नहीं निकल रही?
मुझे क्या मालूम, कुछ बोलूं तो कहा जाता है कि मेरी जबान बहुत तुंद है, तो बेहतर है कि मैं कुछ ना बोलूं।
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
आ जाओ बेटा।
मेहदी आप ठीक हैं?
हाँ ठीक हूँ।
खरदमन साहब मेरी एक मरीजा के शौहर हैं, बहुत अच्छा वकील है। तुम इस केस को बगैर वकील के आगे नहीं बढ़ा सकते।
फूफो सही कह रही है, मेहदी आपको वकील की जरूरत है।
हाँ फोन करूं उसे?
फूफी कितनी फीस लेता है?
जितनी भी ले, तुम अकेले फानी के साथ नहीं लड़ सकते, वो इन कामों में बहुत माहिर है।
मान लीजिए ना,
जो आदमी इस तरह से प्लानिंग करके दूसरों के लिए जाल बिछाता है वो बिलाशब मुजर और 420 आदमी, एक वकील ही उसका मुकाबला कर सकता है।
हरामखोर लोग हैं ना, पता नहीं और कितने लोगों का माल खा के उनकी फैमिलियों को तबाह कर चुके हैं।
फोन करूं उसके पास?
फूफी फोन कर लीजिए, लेकिन जब तमाम सबूत मेरे खिलाफ हैं तो वकील भी कुछ नहीं कर सकता।
उस फानी ने तमाम सबूतों के होते हुए भी वकील किया है, तुम क्यों ना करो? काम को काम जानने के लिए सपोर्ट करना बेहतर है।
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ جگہ کتنی تاریک ہے. پتہ نہیں تم کس طرح اس تاریکی میں بیٹھی ہو. دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ میں نے سمجھا گھر پہ نہیں ہو, واپس جا رہی تھی. اتنا بھی نہیں سوچتی کہ مجھے فکر ہوگی.
میرا کون ہے جس کے پاس جاؤں؟
ارے یہاں سب کچھ کتنا بکھرا پڑا ہے.
ہاتھ مت لگا فرانگ, میں خود ہی سمیٹ لوں گی.
اچھا ٹھہرو, میں تمہاری مدد کرتی ہوں کہ کچھ سمیٹ جائے, بہت بکھرا پڑا ہے. سہر تم ٹھیک ہو؟
ہاں.
یہ بتاؤ اس لڑکے نے تو دوبارہ تو تنگ نہیں کیا؟
نہیں.
اپنے ساتھ یہ ظلم نہیں کرو, بیٹھو ذرا فرحات کی برائیوں کے بارے میں سوچو تاکہ اسے بھلا سکو.
آج کل فرحات کی برائیوں بے وفائیوں کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتی.
تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اس کے شر سے نجات ملی ہے. ایسے سر گھٹنوں پر رکھ کے رونے دھونے اور اسے یاد کہنے سے کیا فائدہ؟
میں اپنی حماقتوں پر رو رہی ہوں.
اس طرح بیٹھ کے اپنی حماقتوں پر رونا خود ایک اور حماقت ہے.
یہ کارٹون یاد ہے؟ ان دنوں امی جان میرے ساتھ بیٹھتی تھی اور سیامہ کو داریوش یہ کارٹون دیکھتے تھے. جانتی ہو کتنا عرصہ ہوا ان کو نہیں دیکھا.
تو اٹھو ابھی چلتے ہیں ان کے پاس. کیا بات ہے, تم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی سہر. تم اکیلی نہ رہو.
مجھے اپنی امی سے آنکھیں ملانے کی جرات نہیں ہو رہی.
ٹھیک ہے تو آنکھیں مت ملاؤ, سر نیچے کر کے جاؤ اور کہو کہ میں نے غلطی کی امی جان, کہو کہ میں پشیماں ہوں. جاؤ اور کہو امی مجھے معاف کر دو. یقین کرو امی کی معافی کے بعد خدا اس کے بعد سب کچھ آسان کر دے گا.
معاف کرنا, میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا.
یہ کیا کہہ رہی ہو, مجھے مسلسل تمہاری فکر لگی رہتی ہے. رو نہیں اب, بس کرو.
میرے لیے ایک چائے پیالی لاؤ گی؟
کیوں نہیں.
بہت شکریہ. دیکھو اس بے غیرت نے میرے لیے کیا بھیجا ہے.
بے غیرت کون؟ فرحات.
پڑھو
ذرا دکھاؤ. کس نے بھیجا ہے؟
صوفی نے, وہی شو روم والا جس سے جا کے گاڑی خریدی ہے.
اچھا کتنا گستاخ بدتمیز, جواب نہیں دیا تم نے.
نہیں بھائی موڈ نہیں ہے.
کیا مطلب؟ تمہیں دھمکی دی ہے, کم از کم مجھے جواب دینے دو.
نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ضد میں آیا ہے. کئی دفعہ مجھے فون کیا, میں نے جواب نہیں دیا, ورنہ کوئی بھی اپنے خلاف ایسا ثبوت نہیں چھوڑتا. میں نے اگر تھانے جا کر پولیس کو یہ دکھا دیا تو اسے سبق سکھا دیں گے.
تمہاری جگہ میں ہوتی تو اسے فون کر کے کہتی کہ اگلی دفعہ اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی.
یقین مانو میرا بالکل دل نہیں چاہتا اس سے ہم کلام ہونے کو, لیکن اگر دوبارہ مجھے تنگ کیا تو ضرور تھانے جا کے اس کی شکایت کر دوں گی. ارے بھائی یہ چائے کہاں گئی؟
نکال رہی ہوں. اسی کمینے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہے؟
نہیں بھائی صبح سے ہی پریشان ہوں.
اوہ کیونکہ تم مسلسل گھر کے اندر بیٹھی ہو. آؤ چائے پیتے ہیں, اس کے بعد دونوں گھومنے جاتے ہیں, اس سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی.
بہت بہت شکریہ.
इंसान को हंसी आ जाती है।
क्यों नहीं, क्या कहूँ भाई, वाकई में हंसी का मकाम है। ये देखो यहाँ किस अहमक ने गाड़ी खड़ी की है।
किसकी है?
क्या बताऊं, जाके चौकीदार से पूछती हूँ, शायद वो जानता हो।
सलाम अर्ज है, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैडम, वाकई मैं शर्मिंदा हूँ। मेरा नाम अजीजी है, आपका नया हमसाया, अपार्टमेंट नंबर 5 में। बहुत बुरा हुआ जो हमारा तारुफ़ इस तरह से हो रहा है।
कोई बात नहीं,
माजरत के साथ, मैं गाड़ी को बाहर खड़ी करना चाहता था लेकिन चौकीदार ने कहा कि यहाँ खड़ी करूँ। बहरहाल फिर भी मेरी माजरत कबूल कीजिए, मैं चलता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं चलता हूँ।
नो प्रॉब्लम।
अरे गाड़ी अभी खरीदी नहीं और स्क्रैच डाल दिया।
कैसे स्क्रैच?
टक्कर हो गई है, ये देखो।
नहीं भाई, टक्कर नहीं हुई है, जिस दिन हम दोनों बाहर गए थे उसके बाद से बाहर नहीं निकाली।
कितना ज्यादा है, क्या हुआ है?
माफ कीजिएगा, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा पेंटर है, चाहे तो उसमें उसका एड्रेस दे दूँ आपको, वहाँ तशरीफ ले जाइए। मुझे यकीन है कि सिर्फ पॉलिश से ही ये दाग चला जाएगा।
शुक्रिया
मैडम, माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी तक पार्किंग का रिमोट नहीं बनवाया है, प्लीज़ रिमोट से दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं गाड़ी ले आना चाहता हूँ बाहर।
हम इस वक्त बाहर जा रहे हैं, आप चाहें तो अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं।
जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पहले भी आपको काफ़ी ज़हमत दे चुका हूँ।
ये ले। वाई वाई वाई, देखो गाड़ी का क्या हाल कर दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं,
मैं फिर आपसे दोबारा माफी चाहता हूँ, जो डिस्टर्ब किया मैंने आपको, माफ कीजिए। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अरे ये तो ठीक ठाक आदमी निकला, हमने बिला वजह उसकी इतनी गैबत की, तुमने उसे इससे पहले नहीं देखा था?
नहीं, सुना तो कह रहा था कि नया आया है।
अब ना कहना कि सारे मर्द एक ही खेत की मूलियां हैं, देखा कितना शख्सियत और वगार वाला इंसान था, शर्म की मारे सर उठा के हमसे आंख नहीं मिला सका।
ये उसी लड़के का काम है।
कौन सा लड़का?
फतुल्लाई का बेटा,
वही रिश्ता मांगने वाला। माफ कीजिए, मेरा कोई खास मतलब नहीं था। कहाँ जा रही हो सहर?
जाके उसकी माँ से बात करना चाहती हूँ कि अपने बेटे को संभाले।
अरे छोड़ो यार।
किस लिए छोड़ूं? क्या मैं इन हालत में यहाँ रह सकती हूँ?
आखिरकार तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जितनी खामोशी से जाओगी उतना ही बेहतर रहेगा।
यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मैंने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, मालिक मकान 1 साल तक पैसा नहीं देगा।
क्या तुम नहीं कह रही थी कि इस लड़के ने सब हमसायों को तंग किया है?
हाँ।
तो ऐसे आदमी से बात कहने का कोई फायदा नहीं है, है क्या?
तो मैं क्या करूँ, उसको छोड़ दूँ जो चीमे चाहे वो करे?
नहीं, जाके मालिक मकान से बात करो और उसे हालात के बारे में बताओ, उससे गुजारिश करो कि जल्द से जल्द आपकी रकम का इंतजाम करे।
अच्छा फर्ज करो उसने रकम दे भी दी तो फिर क्या करूँ?
तो जाके कोई और जगह किराए पर ले लोगी, ये लड़का भी तो तुम्हारी जान नहीं छोड़ रहा।
ओहो फराना, छोड़ो भी प्लीज, फिर से दोबारा सामान बांधना पड़ेगा। घर के मालिक को भी तो जानती हो, हर साल घर से उठने को कहते हैं, मैं हर साल नहीं उठ सकती, ना तो मेरे साथ कोई मदद नहीं करने वाला, ना तुम तो जानती हो मैं एक अकेली औरत हूँ, क्या कर सकती हूँ, किसी अच्छी जगह ले सकती हूँ।
अच्छा तो सारी चीजें बेच दो, ये गाड़ी भी बेच दो, जाके कोई घर खरीद लो।
अरे भाई मेरे पास पैसे कम है, तुम क्या कह रही हो?
मेरे पास भी जितना हुआ तुम्हें कर्ज दे दूंगी, ठीक है?
मेरे पास तकरीबन 100 मिलियन तुमान कम है, तुम दे सकती हो क्या?
अच्छा तो जाके जरा नीचे के इलाके में खरीदो, यहाँ खरीदने के लिए कोई मजबूरी तो नहीं
मैं
है।
नीचे के इलाके कह रही हूँ, 100 मिलियन कम पड़ रहे हैं, इस इलाके में तो इस कीमत से घर खरीदना नामुमकिन है। जरा जाके अखबार में इश्तेहार देखो, कीमतों का पता चल जाएगा।
अच्छा ठीक है,
देखो क्या कर दिया है।
अच्छा अब ज्यादा परेशान ना हो, इसी अजीजी साहब के दोस्त से ठीक करवा लेंगे। आओ बैठो, जल्दी करो। एक काम करो, तुम फरहाद को फोन करके कहो कि तुम्हें यहाँ तंग किया जा रहा है। उसे कहो कि तुम्हें कुछ रकम दे ताकि कोई और जगह खरीद सको।
उसकी तो बात ही मत करो।
क्यों नहीं, रकम लेकर यहाँ से चली जाना और कहीं और घर ले लेना। फोन का नंबर भी तब्दील कर लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पहली दफा उससे मोटी रकम लेनी थी।
अरे भाई, तुम भी किन ख्यालों में हो? क्या ये रकम भी कितनी मुश्किल से उसे निकाल सकी हूँ मैं? अगर अपनी इज्जत और बीवी का ख्याल ना होता तो ये रकम भी कभी भी ना देता।
तो दोबारा उसे यही धमकी दो?
नहीं नहीं भाई, इस तरह तो वो समझेगा कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रही हूँ, समझेगा कि सारी उम्र यही किस्सा चलता रहेगा। उसकी जगह मैं भी होती तो यही समझती। यकीन मानो, इस दफा उसे रकम मांगूंगी तो पैसा देने के बजाय मुझे कुछ कर देगा।
क्या हुआ?
वही है,
कहाँ जा रही हो?
जरा एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ।
सहर जान, तुम यहाँ रह रही हो, उसके साथ बिल्कुल मुंह ना लगाना।
जरा मुझे जाके उसे दो चार सुनाने दो ताकि आइंदा ऐसे हरकत करने की जरूरत ना करे।
ये तरीका सही नहीं है सहर। वापस आएंगे तो बिल्डिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जाके उससे सब कुछ बताना। उसके बाद भी उसने तंग किया तो पुलिस में जाके शिकायत कर लेना।